जय धवला पुस्तक 13वी लेक्चर नंबर 19। ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम नमः सिद्धेय, ओम शुद्धात्मने नमः। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सौवसाः। उवणे उमङ्गलं वो भव्यजनाजिनवरस्तकमकमलजुवं जसकुलिसकलससत्य सशङ्क शङ्ख कुसादिलक्षणभरियम्। यह श्री भीमसेन आचार्य रचित जय धवला टीका है, जो कषाय पाहुर तथा चुन्नी सूत्र ग्रंथों पर लिखी हुई है, जिनके कर्ता है गुंदर भट्टारक तथा यतीयुषप आचार्य, जिन्होंने भगवान महावीर के उपदेश के अनुसार इन ग्रंथों की रचना की है। 13वीं पुस्तक में अभी हम संजमा संजम अर्थाधिकार देख रहे थे और हम पृष्ठ संख्या 147 पर आ गए, 147। यहाँ ये बात चल रही थी कि ये सारे जो संयमा संयम लब्धि स्थान है वो कितने हैं, तो बताया था कि जघन्य से शुरुआत करते हैं, जघन्य से उत्कृष्ट तक असंख्यात लोक प्रमाण है। तो जघन्य स्थान में कितने हैं उसके अविभाग प्रतिशत, उसको स्पर्धक कहा, तो उसमें अनंत स्पर्धक होते हैं। और उसके बाद जीव राशि के अनंत से उसको गुणा करेंगे, वो है तो उसके अनंत गुणा, परंतु जीव राशि वाले अनंत से गुणा उसको भाग देंगे तो वो अनंत भाग वृद्धि वाला स्थान। तो कहते हैं आगे आगे उसके वृद्धि वाले स्थान पाए जाएंगे। उसमें हमने षटस्थान पतित का स्वरूप देखा था, तो ये षटस्थान पतित सारे लब्धि स्थान होते हैं, वो कितने हैं, तो कहते असंख्यात लोक प्रमाण। ये जो जघन्य लब्धि स्थान है वो कौन सा है, तो प्रतिपात वाला, यानी यहाँ से जीव नीचे के गुण स्थानों में गिरने वाला है। जब संयमा संयम प्राप्त होता है उस समय ये स्थान नहीं पाया जाता। क्या केवल एक ही की बात है? नहीं, ये जो सारे प्रतिपात स्थान है वो तो गिरने के सन्मुख वाले जीव के है, जो प्रतिपद्यमान होते हैं संयमा संयम प्राप्त करने वाले के, उसके स्थान तो इसके आगे है, वो उसके अनंत गुणे विशुद्धि वाले होगे। तो हमने अभी यहाँ 147 का पहला सूत्र पढ़ेंगे हम। तदो असंख्येज्य लोगे ऐच्छिदूण जहन्नम जहन्नयम परिवज्यमानस्य पाहुगम लब्धिस्थानम अनंत गुणम। उससे असंख्यात लोक प्रमाण लब्धि स्थानों को उल्लंघन कर अनंत गुणी वृद्धि स्वरूप प्रतिपद्यमान स्थान के योग्य जघन्य लब्धि स्थान होता है। पहला जघन्य देखा, वो प्रतिपात वाला जघन्य देखा, अब प्रतिपद्यमान में से जो जघन्य है उसकी बात करेंगे। तदो अर्थात पूर्वोक्त जघन्य स्थान से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण एकांत से प्रतिपात के योग्य, यानी मात्र प्रतिपात के योग्य लब्धि स्थानों को उल्लंघन कर, यहाँ सर्वोत्कृष्ट प्रतिपात स्थान से, क्या कहा, सर्वोत्कृष्ट प्रतिपात स्थान के बाद इमीडिएट प्रतिपद्य नहीं होगा, बीच में भी असंख्यात लोक प्रमाण अंतर देकर उससे अनंत गुणी वृद्धि को लिए हुए प्रतिपद्यमान स्थान के योग्य जघन्य लब्धि स्थान होता है। इन्हें शुरू से प्रतिपात स्थान असंख्यात लोक प्रमाण तो है ही है, बीच में असंख्यात लोक प्रमाण अंतर वाले स्थान भी छोड़ दिए हैं, वो किसी जीव के नहीं होते हैं, फिर जघन्य प्रतिपद्यमान मिलेगा। इन्हें इतने मिनिमम पॉसिबल विशुद्धि के साथ कोई जीव पांचवे गुण स्थान में आ सकता है। इससे नीचे के समस्त लब्धि स्थानों में प्रतिपात को छोड़कर उनमें सेमासेम की प्राप्ति का अत्यंत अभाव होने से उनमें उसकी प्राप्ति का निषेध किया है। यह इस सूत्र का भावार्थ है। प्राप्ति यानी जब वो पहली बार सेमासेम में आता है उस समय की बात है। वो प्राप्ति वाले स्थान नहीं है, नीचे के प्राप्ति वाला जघन्य में जघन्य जो स्थान है, जब किसी भी जीव को सेमासेम की प्राप्ति होती है तो मिनिमम विशुद्धि इतनी तो रहेगी ही रहेगी। उससे नीचे की विशुद्धि के साथ प्राप्ति का कार्य नहीं होगा। ख्याल में ये बात? हाँ, प्रतिपाद गिरने के स्थान, गिरने के सन्मुख, क्योंकि संयमा संयम है बिल्कुल, क्योंकि ये संयमा संयम के स्थान बता रहे हैं। हाँ, प्रतिपाद स्थान उसी जीव के होते हैं जो पांचवें से नीचे नियम से जाने वाला है, और जिसको प्राप्ति होती है उसके वो नीचे वाले स्थान कभी नहीं होते। अब इस सूत्र से सूचित इसी अर्थ का स्पष्टीकरण करने के लिए आगे के अल्प बहुत्व के साधनभूत किंचित अर्थ की यहाँ प्ररूपणा करेंगे।
यहाँ पे बताएं, इनके नीचे के समस्त लब्धि स्थानों में प्रतिपात को छोड़कर उनमें संयम संयम की प्राप्ति का अत्यंत अभाव।
प्रतिपात वाले भी संयमा संयम है, वहाँ संयमा संयम नहीं है वो बात नहीं है। हाँ। परंतु यहाँ किस गिरा नहीं, अभी गिरने वाला है, उसका नाम क्या संयमा संयम ही कहेंगे। अभी वो पांचवे गुण स्थान वाला ही है। प्रतिपात होने वाला है यानी उसकी विशुद्धि इतनी कम, क्योंकि संकलेश बढ़ रहे हैं ना, तभी तो उसके भी नीचे के सन्मुख है, पहले के सन्मुख होगा या चौथे के सन्मुख होगा।
तो ये प्रतिपात और प्रतिपद्यमान जो स्थान है उसके बीच के जो स्थान है वो भी पांचवे गुण स्थान के स्थान है कि नहीं है,
वो किसी है ही नहीं किसी के।
तो इसे बताया ना,
उसको अंतर वाले स्थान बताए,
संयम असयम की प्राप्ति का अत्यंत अभाव होने से वो स्थान पांचवें गुण स्थान के, पर उसकी प्राप्ति के अत्यंत अभाव होने से।
क्या कहते हैं, क्या लिखा?
इसे नीचे के समस्त लब्धि स्थानों में प्रतिपात को छोड़कर उनमें संयम असयम की प्राप्ति का अत्यंत अभाव,
प्राप्ति
का अत्यंत अभाव,
प्राप्ति का अत्यंत अभाव। अब कहते हैं ऊपर की लाइन पढ़ो, देखो ये 90 जहाँ लिखा है ना सूत्रकार, 147 पृष्ठ पर ये विषय अपना संयमा संयम मैंने पांचवें गुणस्थान का चल रहा है, और उसमें भी अलग अलग जीवों की अलग अलग विशुद्धि पाई जाती है, उसको कहेंगे संयमा संयम लब्धि स्थान। किसकी अपेक्षा बात करेंगे? विशुद्धि की अपेक्षा। तो संयमा संयम के जो लब्धि स्थान कहो या विशुद्धि स्थान कहो, उसमें तीन भेद बताए। एक है प्रतिपात स्थान, एक है प्रतिपद्यमान स्थान, और जो दोनों ही नहीं है, अप्रतिपात और प्रतिपद्यमान, जिसको हमने अनुभय नाम दिया, वो लब्धि स्थान में उसको अनुभय भी कहा। तो यहाँ ये विशुद्धि, अलग अलग विशुद्धि के स्थान अलग अलग जीवन की अपेक्षा ये बता। तो जघन्य में जघन्य मिनिमम पॉसिबल जो है ये सारे जो प्रतिपात स्थान है, ये जघन्य है, ये उत्कृष्ट है। और ये स्थान कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण स्थान अलग अलग है। इस स्थानों से जीव नीचे के गुणस्थानों में गिरता है, गिरने के सन्मुख जीव के इनमें से कोई ना कोई वहां विशुद्धि पाई जाएगी। ये बात हुई। अब उसके आगे इन बिटवीन असंख्यात लोक प्रमाण का अंतर छोड़कर यहां से यहां तक ये प्रतिपद्यमान जघन्य से उत्कृष्ट हो गए। ये प्रतिपद्यमान स्थान कब कहेंगे? जब पहले से चौथे में, सॉरी पांचवे में, या चौथे से पांचवे में जो जीव आता है उस समय उसकी इतनी विशुद्धि हो, ज्यादा है वो विशुद्धि बहुत, इनसे इसके उत्कृष्ट से भी इसका जघन्य अनंत गुणा विशुद्ध है। तो इनमें प्राप्ति इन्हीं स्थानों में होगी। प्राप्ति ने उसका पहला दूसरा तीसरा समय एकांत वृद्धि होती है, चली जाती है, तो ये सारे स्थान इसमें पाए जाएंगे, प्राप्ति के स्थान। ये स्थान प्राप्ति में कभी नहीं होगा, ये जघन्य के नीचे वाला कोई स्थान प्राप्ति में नहीं होगा। तो संयमा संयम की प्राप्ति का अत्यंत अभाव नहीं, वो संयमा संयम में नहीं होगी। प्रतिपात संयमा संयम तो है ये जी, अभी नीचे के गुण स्थानों में गया नहीं है, जाने वाला है नियम। तो यहाँ ये वाक्य में फिर पढ़ती हूँ 90 नंबर, यानी वहाँ इस पृष्ठ का सूत्र से नीचे उसका स्पष्टीकरण। तदो इन्हें पूर्वोक्त जघन्य स्थान से लेकर असंख्यात लोक प्रमाण एकांत से प्रतिपात के योग्य लब्धि स्थानों को उल्लंघन कर। देखो ये प्रतिपात की बात चल रही है, जघन्य से उत्कृष्ट तक ये सब हो गए। अब कहते यहाँ सर्वोत्कृष्ट प्रतिपात स्थान से, ये उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान, इसके ऊपर इसको उल्लंघन कर। ऊपर क्या है? असंख्यात लोक प्रमाण अंतर देकर। हाँ, ये कितनी गैप है यहाँ, असंख्यात लोक प्रमाण स्थान होते किसी न किसी जीव के, तो उसको अंतर देकर यानी उसको उल्लंघन कर, यानी ये बीच वाले स्थान की उसका स्वामी कोई नहीं है। तो यहाँ कौन सा? ये जघन्य किसका है? प्रतिपद्यमान, यानी जो अभी अभी पांचवे में आए हैं, ऐसे जीवों की बात है। अनंत गुणी वृद्धि को लिए हुए प्रतिपद्यमान स्थान के योग्य जघन्य लब्धि स्थान होता है, यानी किसी जीव को इतनी कम विशुद्धि के साथ भी पांचवा गुण स्थान प्राप्त हो सकता। इससे नीचे के समस्त लब्धि स्थानों में प्रतिपात को छोड़कर उनमें सेमा सेम की प्राप्ति का अत्यंत अभाव होने से उनमें उसकी प्राप्ति का निषेध किया है। उसमें प्रतिपात तो हो सकते हैं स्थान, परंतु प्राप्ति का स्थान जघन्य जब बता दिया तो प्राप्ति के इसके नीचे कोई प्राप्ति का स्थान नहीं ही होता, अत्यंत अभाव है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता। यह इस सूत्र का भावार्थ है। अब इसी का स्पष्टीकरण करेंगे।
वो अनुभव स्थान हो सकते हैं?
नहीं, अनुभव यहाँ नहीं आए,
अनुभव भी नहीं होता
यहाँ। प्रतिपात ही हो सकते उसके नीचे, अनुभव नहीं हो सकते। अनुभव में से तो संयम में प्राप्त करने वाला है या स्वस्थान वाला है। हमने क्या देखा था? एकांत वृद्धि के स्थान पाए जाएंगे। अभी अनुभव की चर्चा कहाँ आई है? ये प्रतिपद्यमान तक हम पहुंच गए, अनुभव की बात जब आएगी तब उसकी बात करेंगे। पहले इसको समझेंगे। देखो यथा, ये नीचे का पैराग्राफ, सबसे जघन्य लब्धि स्थान से लेकर ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिपात स्थान मनुष्यों के योग्य ही होकर तब तक जाते हैं। ये संयमा संयम कौन कौन से गति वालों को प्राप्त होता है? तेजल, मनुष्य और तीर्यंश। अब ये मात्र प्रतिपात स्थानों की बात है, हम उसको यहाँ बताते हैं, प्रतिपद्यमान की नहीं। यही हमने यहाँ थोड़ा बड़ा करके देखेंगे। तो कहते जघन्य से लेकर कितने ही स्थान ऐसे मात्र मनुष्यों के हो गए, इतनी जघन्य विशुद्धि के साथ तीर्यंश पांचवा गुण स्थान प्राप्त नहीं करते। क्या लिखा? देखो, सबसे जघन्य लब्धि स्थान से लेकर ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिपात स्थान मनुष्यों के हो योग्य ही होकर, ही लगाया, मात्र मनुष्यों के होकर तब तक जाते हैं जब जाकर तत्प्रायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण स्थानों को उल्लंघन कर। उसमें भी असंख्यात लोक बार अनंत गुणा वृद्धि के स्थान चले जाएंगे। एक षट्स्थान होता है, उसमें छह प्रकार की वृद्धि होती है, वो षट्स्थान पतित वृद्धि होते हैं। असंख्यात लोक प्रमाण बार षट्स्थान हुए, यानी उतनी बार अनंत गुणा होकर यहाँ का स्थान हो गया। अब इसकी विशेषता बताएंगे। तीर्यंश योनि जीव का जघन्य प्रतिपात स्थान उत्पन्न होगा। अब यहाँ से तीर्यंशों के भी स्थान चालू हो गए, परंतु ये बात है, ये मनुष्यों के भी हो गए और तीर्यंशों के भी। नीचे के मात्र मनुष्यों के थे,
बीच में यहाँ पे भी बीच में अंतराल दिया,
नो अंतराल,
क्या वो लोक प्रमाण प्रस्थान स्थानों को उल्लंघन,
उल्लंघन करें मात्र मनुष्यों के है, उसको उल्लंघन कर। उल्लंघन करें यानी अंतर देकर नहीं।
अच्छा,
ये स्टार्ट हो गए मनुष्यों के स्थान यहाँ से, पूरी रेंज मनुष्यों की तो होगी होगी, तीरियंसों की इन बिटवीन होगी, क्योंकि तीरियन से तो कोई संयम प्राप्त करने वाला नहीं है, तो उसके प्रतिपद्यमान के स्थान के ऊपर के स्थान तो होगी नहीं, उससे ज्यादा विशुद्धि वाले। ये तो प्रतिपात की बात चल रही है, उसके प्रतिपद्यमान होगे। यहाँ क्या लिखते देखो कि असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिपात स्थान मनुष्यों के होकर ही हो, योग्य ही होकर तब तक जाते हैं जब जाकर तत्प्रायोग्य असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थानों को उल्लंघन कर तिर्यंश योनि जीव का जघन्य प्रतिपात स्थान उत्पन्न हुआ है। यानी यहाँ ये तिर्यंशों के योग्य, यहाँ से तिर्यंशों की उससे नीचे वाली नहीं होगी प्रतिपद्यमान में भी, यहाँ से वो नीचे चले जाएंगे, नीचे के गुण स्थान प्रतिपात प्रतिपात की नीचे जाने वाले प्रतिपात वाले। पुनः वहां से लेकर तिर्यंश योनि और मनुष्य दोनों के साधारण रूप से पाए जाने वाले असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिपात स्थानों के जाने पर उस स्थान पर तिर्यंश के उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान की विच्छुति हो जाती है। यानी ये मनुष्य तिर्यंश दोनों के स्थान यहाँ तक है, परंतु तिर्यंश के लिए उत्कृष्ट था, ये तिर्यंश के लिए जघन्य था। ये सारे प्रतिपात स्थान की बात चल रही है। तत्पश्चात फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान ऊपर जाकर इस स्थान पर मनुष्य का उत्कृष्ट प्रतिपात स्थान विच्छिन्न हो जाता है। यानी ये सारे मात्र मनुष्यों के ही होगी स्थान पर, ये उसके लिए उत्कृष्ट गिरने के। यहाँ से जीव चौथे में, पहले में और नीचे के गुण स्थानों में चला जाता है। यानी यहाँ भी ये मात्र मनुष्यों के, ऊपर के भी मात्र मनुष्यों के, इन बिटवीन वाले तीन मनुष्य दोनों के लिए, यानी मनुष्यों के लिए यहाँ जघन्य से लेकर यहाँ तक और तिर्यंशों के लिए इन बिटवीन। और उसका सबका प्रमाण कितना, तो असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान बताए। ये मनुष्य का जघन्य है, मनुष्य का उत्कृष्ट तो एकदम टॉप मोस्ट, और इन बिटवीन जो है मनुष्य के तो सभी स्थान है, पर तिर्यंशों के लिमिटेड है ना, बीच वाले तिर्यंशों के जघन्य और उत्कृष्ट, और यहाँ तो मनुष्य तो है ही नहीं। इसके बाद ये प्रतिपात हो गए स्थान, यानी गिरने के सन्मुख वाला जीव है तो सेमा सेम वाला। इसके बाद असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होकर, ये अंतर प्रतिपात और प्रतिपद्यमान के बीच वाला है जो हमने यहाँ देखा था। ये प्रतिपात यहाँ बताएं, उसके बाद बीच में अंतर, और ये प्रतिपद्यमान स्थान होगा। अब प्रतिपद्यमान की बात करेंगे, अभी हम पृष्ठ 148 पर आ गए। तो कहते प्रतिपात के बाद असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होकर, ये अंतर है, अंतर का अर्थ हो उतनी गैप छोड़ना, विशुद्धि वाली, उसमें कोई
हाँ
कोई जीव नहीं है उसमें। पुनः मनुष्य संयता संयत का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है। यहाँ पर भी पहले मनुष्य को लिया, ये मनुष्य का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान हुआ। आगे पढ़ेंगे, तत्पश्चात असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाकर, हाँ सब जगह इतना तिर्यंश संयता संयत का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है। ऐसे वहां पर भी लगाए, सेम ऐसा लगाएंगे, वहां भी ये मनुष्य के, ऊपर के भी मात्र मनुष्य के, इन बिटवीन मनुष्य तिर्यंश के, ये तिर्यंश का जघन्य, ये तिर्यंश का उत्कृष्ट, ये मनुष्य का जघन्य, मनुष्य का उत्कृष्ट। तो पहले स्थान मात्र मनुष्य के हैं, फिर तिर्यंश का भी यहाँ आ जाएगा, परंतु वो मनुष्यों में भी उसका वो मध्यम स्थान कहेंगे, जो तिर्यंश का जघन्य है वो मनुष्य की वो इन बिटवीन मध्यम अजघन्य अनुत्कृष्ट वाली वो बात है, उसकी रेंज है ना पूरी जघन्य से उत्कृष्ट तक। तीर्यंश के लिए केवल इन बिटवीन वाला जो रेंज है उतनी होगी, वे भी असंख्यात लोक प्रमाण हो गए। इतने अलग अलग परिणाम होते हैं पांचवे गुणस्थान वालों की विशुद्धि के। ये तो अभी मात्र प्रतिपद्यमान की बात चल रही है, अभी अभी जिन्होंने प्राप्त किया उनकी बात चल रही है। देखो तत्पश्चात असंख्यात लोक प्रमाण सेकंड लाइन स्थान जाकर तिर्यंच संहिता संयत का जघन्य प्रतिपद्यमान स्थान होता है। वहां से लेकर दोनों के ही समान रूप से असंख्यात लोक प्रमाण स्थान ऊपर जाकर वहां तिर्यंच संहिता संयत के उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान की विच्छित्ति हो जाती है, यानी वहां तक ही उसका स्थान है, वो ही उसका उत्कृष्ट स्थान है। उससे ऊपर भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाकर मनुष्य का उत्कृष्ट प्रतिपद्यमान स्थान विच्छिन्न हो जाता है, वहां तक उसके स्थान है। आगे क्या कहते हैं, तत्पश्चात असंख्यात लोक प्रमाण अंतर होकर प्रतिपद्यमान स्थान के ऊपर भी फिर अंतर बताएंगे। जैसे यहाँ अंतर था ऐसे यहाँ पर भी ऊपर अंतर है, प्रतिपद्यमान के भी ऊपर अंतर है, ऊपर और विशुद्धि बढ़ाते चला जाए। उसके बाद क्या होगा, मनुष्य संहिता संयत के जघन्य अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान होते, यानी जो रेगुलर जो अभी अभी आया है तो हमने कहा एकांत वृद्धि होती चली जाती है, और बाद ऊपर के तो सारे अनंत गुणा विशुद्धि वाले स्थान होंगे। वहां भी ऐसे लेना जो अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान है, हमने यहाँ देखा ना, तो ये जो प्रतिपद्यमान का उत्कृष्ट है उससे ऊपर असंख्यात लोक प्रमाण अंतर जाएगा और उसके ऊपर जघन्य होगा, किसके लिए, मनुष्यों के लिए, अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान। उसके असंख्यात लोक प्रमाण स्थान जाने पर तिर्यंच का भी होगा, पहले मात्र मनुष्यों के हो गए। उसके बाद असंख्यात लोक प्रमाण स्थान ऊपर जाकर तिर्यंच असंहिता संयत के मिला अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान होता है। तत्पश्चात दोनों के ही साधारण यानी समान रूप से असंख्यात लोक प्रमाण स्थान ऊपर जाकर तिर्यंच संहिता संयत के उत्कृष्ट अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान को उल्लंघन कर तत्पश्चात फिर भी असंख्यात लोक प्रमाण स्थान ऊपर जाकर मनुष्य संहिता संयत का उत्कृष्ट अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान उत्पन्न होता है। यहाँ पर प्रतिपात स्थान अधस्तन गुणस्थानों को प्राप्त होने वाले तिर्यंच और मनुष्यों के अंतिम समय के लेने चाहिए, ये अंतिम मात्र अंतिम समय में इतने वेरिएशन है, यानी वो लगातार अंतर्मूर्त तक बढ़ते हुए संकलेश वो नहीं लेना है। जो जीव नेक्स्ट समय में पहला या चौथा गुणस्थान प्राप्त करेगा तो ये पांचवें गुणस्थान का अंतिम समय है, उसमें रेंज कितनी है, असंख्यात लोक प्रमाण, एक समय की बात है ये गिरने वाले की। हाँ अलग अलग जीवों के तीन काल की अपेक्षा की कौन कौन सी विशुद्धियां यहाँ पॉसिबल है उसकी बात। जब जब स्थान कहते हैं अलग अलग जो स्थान हम कहते हैं तो अन्य अन्य जीवों की नाना जीवों की अपेक्षा, जब कभी कोई जीव पांचवे से गिरेगा तो उसके इसमें से कोई एक स्थान होगा।
तो अनुपय स्थान है उसमें से एक समय में अनंत गुण हानि होके वो प्रतिपात स्थान में जाकर पीछे छोड़ नीचे के।
अब कहते प्रतिपद्यमान स्थान तिर्यंच मनुष्यों के संयमासयम को ग्रहण करने के प्रथम समय के जाने जाएंगे। ओहो यहाँ पर भी वो एकांत अनुरुद्धि के सब नहीं समझना,
ये तो ये प्रथम
एक ही समय की बात, पहले समय की, पहले समय के क्यों, क्योंकि हर समय उसके अनंत गुणा विशुद्धि होती है, तो दूसरे समय से अप्रतिपात अप्रतिपद्य में चला जाएगा,
अनुभव में चला जाएगा।
तो कहाँ कोई यहाँ से है जघन्य वाला भी है तो ऊपर इतना सब लांग कर उसके ऊपर अंतर का लांग कर फिर उसमें जघन्य वो मनुष्य तिर्यंच ये मनुष्य की है तो मनुष्य का जघन्य हो सकता है यानी इतनी अनंत गुना विशुद्धि उसके सेकंड समय में होगी। प्रतिपद्यमान स्थान पहले समय में है। जो कोई जीव पांचवें गुण स्थान प्राप्त करता है लगातार अंतर्मूर्त तक एकांत अनुवृद्धि होती है, विशुद्धि अनंत गुना बढ़ती है। तो ये कितने अनंत एकदम दूसरे समय में कितना अनंत गुना हुआ कि वो प्रतिपद्यमान स्थान में से जाकर अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान में पहुंच गया। यानी एकांत अनुवृद्धि के सेकंड समय से लेकर जो सारे परिणाम है वो सब ऊपर अनुभव में चले जाएंगे।
तो आपने एकांत वृत्ति के स्थान तो अप्रतिपद्यमान में देखे थे, अरे प्रतिपद्यमान में देखे थे कि नहीं?
नहीं नहीं नहीं, पहला समय मात्र यहाँ लिखा है ना,
खाली एक ही समय,
एक ही समय लेना। ये क्लैरिटी यहाँ ज्यादा की उन्होंने, प्रथम समय के जानने चाहिए लिखा ना, प्रतिपात में अंतिम समय लेना,
तो प्रतिपद्यमान में पहला समय,
प्रतिपद्यमान में पहला समय लेना। अब अनुभव कब हो गया, पहला समय भी छोड़ो लास्ट वाला भी छोड़ो, इन बिटवीन जो कोई स्थान हो गए वो सारे क्या हो गए, अनुभव वाले और प्रतिपात और प्रतिपद्यमान। प्रथम समय और अंतिम समय को छोड़कर शेष समस्त मध्यम अवस्था के योग्य स्वस्थान संबंधी और उपरिम गुण स्थान के अभिमुख हुए स्थान अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान स्थान कहलाते हैं। एक्चुअली यहाँ उसको स्वस्थान नाम दे दिया है, परंतु एकांत वृद्धि के दूसरे समय के स्थान भी उसी में आ जाएगी। मंजूबेन ख्याल में आती बात, आपका कितना अभ्यास है मालूम नहीं है और कितना ग्रहण हो रहा है मालूम नहीं है आपको, कोई बात नहीं, ये भी तीन दिन से आ रही है बेटे, थोड़ा सुनते जाएंगे तो उसमें से कुछ ना कुछ ग्रहण होगा जरूर। देखो बोलो, हाँ तीरियंचो में अंतर ज्यादा होगा,
तीरियंच में ज्यादा विशुद्धि के साथ सातवां गुण स्थान प्राप्त होगा और मनुष्य कम विशुद्धि के साथ,
उनके प्रतिपद्यमान और अनुभव में भी अंतर ज्यादा ऐसे अंतर है, क्योंकि उनकी मनुष्यों की रेंज बड़ी है और तीरियंचो की छोटी है, उसमें से वो इतने स्थान लांग कर ऊपर चले जाएंगे, यानी उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ेगी। अनुभव स्थान, हाँ नहीं नहीं नहीं, संयम के सम्मुख होने वाले की बात नहीं है, पहला समय जो पांचवा गुण स्थान प्राप्त करने का है वो पहले समय में जो कोई विशुद्धि है वो प्रतिपद्यमान में आ जाएगी। दूसरे समय से लेकर जब तक वो पांचवें गुणस्थान में है, वो सन्मुख वाला नीचे गिरने का वो अंतिम समय छोड़ दो, सेकंड लास्ट समय तक, यानी पांचवें गुणस्थान में आने के दूसरे समय से लेकर पांचवा गुणस्थान छोड़ने के गिरने के ऊपर चढ़ने वाले भी स्थान वो अनुभव में ले लिए। छोड़ने का तो अंतिम समय प्रतिपात में आ गया, परंतु ऊपर चढ़ने के अनुभव में आ गए। उसको अनुभव कहेंगे अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान। देखो हम अभी इसको कहेंगे, ये प्रतिपात वाले यहां से यहां तक, ये प्रतिपद्यमान वाले स्थान, उसमें इन बिटवीन दोनों के इन बिटवीन तीरियंचों के स्थान। अब यहां से लेकर ये सारे क्या है, अनुभव, ये उसमें भी तीरियन चौंकी रेंज। जब जीव पहली बार पहले समय में पांचवा गुण स्थान प्राप्त किया है, इनमें से कोई एक स्थान उसके है, मनुष्य होगे तो उसकी रेंज यहां से लेकर यहां तक, और तीरियंच होगी तो इन बिटवीन जो रेंज है वो तीरियंच के लिए। यहाँ तक बात करने, ये पहला समय और ये स्थान सारे अंतिम समय। अब दूसरे समय से सेकंड लास्ट समय तक जो कोई स्थान हो गया तो इसमें से हो गया। गिरने का अंतिम, ऊपर चढ़ने वाला का अंतिम नहीं, पांचवें गुण स्थान से पहले में या चौथे में जाने वाले की बात, अमीन। हाँ, दूसरे समय में अभी कोई टीडियंस है तो उसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक थी पहले समय में, दूसरे समय में इतनी हो गई, तो उसने यहाँ से इतना जंप मारकर यहाँ की विशुद्धि हो गई दूसरे समय में। हाँ, ये तो विशुद्धि जगन्य, ये विशुद्धि की बात यहाँ बता रहे, यहाँ समयों की बात नहीं कर रही, ये लास्ट समय और ये फर्स्ट समय और इन बिटवीन। हाँ, अनुभव हो जाता है,
अनुभव में जाने के पश्चात भी पहले कल वृद्धि के स्थान होगी और पीछे स्थान हो गए, फिर हमने जो अल्प बहुतों में देखा था
वो सारे इसमें कवर हो गए। अब ये टॉप मोस्ट स्थान कौन सा होगा जो सातवें में जाने वाला है, वो पांचवें गुण स्थान का अंतिम समय है, परंतु ये लास्ट जो लिखे है प्रतिपात वो गिरने वाले लास्ट, ऊपर चढ़ने वाले तो मनुष्यों के ही हो गए, तीरियंचों में तो ऊपर का गुण स्थान ही नहीं है उनके लिए, तो मात्र वो तो अपना पांचवे में रहने का जी विशुद्धि के स्थान कहेंगे हम, ये मनुष्यों के ऊपर के सारे स्थान।
तो ये अनुभव स्थान है, वहाँ से गिरने वाला जीव एक समय के लिए नीचे के आएगा और पीछे नीचे के गुण स्थान
निकलना नहीं है।
हाँ,
वो यहाँ की विशुद्धि उसके गिर कर यहाँ कंटिन्यूस अंतर्मूर्त तक यहाँ तक गिरेगी मान लेते हैं, एक समय में एकदम यहाँ का टॉप मोस्ट विशुद्धि का यहाँ का
नहीं, वो तो नहीं,
वो तो नहीं होगा,
वो बीच वाला
तो अंतर्मूर्त तक उसके कुछ न कुछ संकलेश चल रहे हैं ना, तो उसकी यहाँ की विशुद्धि कम होती उसको अनुभव ही कहेंगे, अंतिम समय में तो इनमें से किसी स्थान को प्राप्त होगी। हाँ, फिर भी इतना अंतर लांग कर यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा,
ये प्रतिपद्यमान स्थान को लांग कर
गिरना हो तो प्रतिपद्यमान में से ही गिरेगा अनुभव से। हाँ, आएगा ही,
एक समय
गिरना वाला है तो प्रतिपद्यमान कैसे होगा, वो तो जो प्राप्त करने वाले के, वो प्राप्त करने वाले की विशुद्धि है, ये गिरने वाले की बात है। नहीं नहीं, वो भी सब उसमें लेना, और जब तक पांचवें गुण स्थान में है, मान लेते करोड़ पूर्व में कुछ कम काल तक पांचवें गुण स्थान कंटिन्यूस है, तो इसमें से कभी उसकी वृद्धि होगी कभी हानि होगी उसके, इसमें इस रेंज में उसके संकलेश विशुद्धि होती रहेगी, इसी में अनुभव में वहां भी घटना होता है, परंतु उसकी रेंज ये इतनी है, इसमें से उसमें अब घटना बढ़ना होगा विशुद्धि की। हाँ, उसमें भी स्वस्थान एकांत वृद्धि सब आएगी, तिरिंचों में जब पांचवा गुण स्थान प्राप्त होता है तो शुरू में उसके एकांत वृद्धि कहेंगे और बाद में उसको स्वस्थान या अदर प्रवृत्त सेम असेम कहेंगे। और क्या देखते हैं, हम क्या कहते हैं, अब इन तीनों प्रकार के लब्धि स्थानों का सुखपूर्वक ज्ञान कराने के लिए यह संदृष्टि बहुत अच्छी, कहते संदृष्टि मूल में दी है, ये मूल में जो ऊपर लिखे ना 00 संस्कृत में, क्योंकि यहाँ क्या के यहाँ जो हमने जो ऐसा दिखाया है उन्होंने आड़े ऐसे 00 लिखे ऐसे ऐसे, देखो अभी इसको 00 बनाओ तो यहाँ हम 4-5 0 बनाए, यहाँ ज्यादा बनाएंगे उससे ज्यादा बनाएंगे, तो कहते हैं उसकी हम उसका अर्थ देखते हैं नीचे। यहाँ पर प्रतिपात लब्धि स्थानों का अध्वान यानी आयाम यानी लंबाई थोड़ा है, उससे प्रतिपद्यमान लब्धि स्थानों का अध्वान कितना है, असंख्यात गुना है, उससे अप्रतिपात अप्रतिपद्यमान लब्धि स्थानों का अध्वान असंख्यात गुना है, इन्हें इतने अलग अलग वेरिएशन है उनके स्थान ने वेरिएशन, गुणकार सर्वत्र असंख्यात लोक प्रमाण है, प्रतिपात लब्धि स्थानों से
प्रतिपद्यमान
असंख्यात लोग गुणा प्रतिपात प्रतिपद्यमान स्थान है और उससे असंख्यात लोग गुणा
अनुभय
अनुभय स्थान है। लंबाई हाँ यानी यहाँ तो परिणाम स्थानों की संख्या कही है, यहाँ आयाम किसको कहा, ये एक स्थान दो स्थान तीन स्थान ऐसे कितने असंख्यात लोग, यहाँ भी असंख्यात लोग है फिर भी उससे वो असंख्यात लोग गुना है। इस प्रकार इस प्ररूपणा द्वारा जिनके संस्कार उत्पन्न हुए हैं उन शिष्यों के लिए इस समय अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करने के लिए आगे का सूत्र प्रबंध आया। ये संस्कार किस गुण की पर्याय है मंजू बहन, ज्ञान गुण की। तो संस्कार उत्पन्न हुए हैं उन्होंने जान लिया है इस विषय के बारे में, उनको अभी आगे के और अल्प बहुत्व की प्ररूपणा करेंगे। कहते त्यूव मंददाय अपावहुम, तो अभी तक तो जो हमने अल्प बहुत्व देखा था वो तो उनकी संख्या देखी थी, प्रतिपाद के स्थान कितने, प्रतिपद्यमान के कितने और अनुभय के कितने। अब उसमें तीव्र मंदता की अपेक्षा अल्प बहुत्व कहेंगे कि कहाँ विशुद्धि ज्यादा है कहाँ कम है। अब तीव्र मंदता के अल्प बहुत्व का अधिकार है, तिर्यंच और मनुष्य जाति से संबंध रखने वाले इन लब्धि स्थानों को परस्पर देखते हुए विशुद्धि के हीनाधिक पने को तीव्र मंदता कहते हैं। उस तीव्र मंदता का ज्ञान कराने के लिए आगे अल्प बहुत्व करेंगे, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। जब यहाँ लब्धि स्थान को मंद कहेंगे तो विशुद्धि मंद है समझना, और ऊपर जो उत्कृष्ट लब्धि स्थान है कहेंगे तो वहाँ विशुद्धि ज्यादा है। और कषाय का उदय उल्टा होगा, जहाँ विशुद्धि मंद है वहाँ कषायों का तीव्र उदय है। ये नीचे के स्थान क्या है, विशुद्धि मंद है, यह अनंत गुणा विशुद्धि वाले ऊपर के स्थान ऐसा है, उसका अर्थ कषाय में उल्टा लगाना। कषायों में उदय स्थान कहते हैं और यहाँ सेमा सेम लब्धि स्थान है नहीं, उसके विशुद्धि के स्थान है। जी जब कषायों की बात करेंगे तो उसको हम उदय स्थान कहेंगे, तो कषायों का यहाँ तीव्र अनुभाग का उदय है, ऊपर ऊपर मंद अनुभाग का उदय। रिवर्स में देखो अभी इसको पढ़ेंगे, सव मंदानुभागम जहन्नगम सैमा संयमस्य लब्धिस्थानम, ये सूत्र की साइन यहाँ नहीं लिखी और संयमा संयम का जघन्य लब्धि स्थान सबसे मंद अनुभाग वाला है। सबसे मंद अनुभाग का नाम सर्व मंदानुभाग है, सबसे जघन्य शक्ति से युक्त यह है, उक्त कथन का तात्पर्य। शंका, वह क्या है, तो संयमा से उत्तर दे रहे समाधान, संयमा संयम का जघन्य लब्धि स्थान क्योंकि मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले सबसे अधिक संक्लेश परिणाम वाले संयता संयत के अंतिम समय में उसकी उपलब्धि होती है। ये सबसे जघन्य स्थान कौन सा है, तो प्रतिपात वाला है, प्रतिपात वाले भी असंख्यात लोक प्रमाण है, उसमें मिनिमम वाला चाहिए, यानी वो विशुद्धि मिनिमम है, यानी पांचवे के योग्य वहां मैक्सिमम संक्लेश हो रहे हैं, नेक्स्ट समय में वो मिथ्यात्व में आने वाला है, तो यहाँ पर उसके संकलेश सबसे तीव्र है, यानी विशुद्धि सबसे मंद है। अब ये नीचे के जगन्य वाले स्थान किसको गए, मनुष्य को के तीव्र मनुष्य में बहुत सारे असंख्यात लोग प्रमाण मनुष्यों के स्थान देखे थे हमने, तो कहते हैं मनुष्यस्य परिवदमानयस्य जहन्नयम् लब्धिस्थानम् तत्तीयम् चैव, गिरने वाले मनुष्य का जघन्य लब्धि स्थान उतना ही है। ये जघन्य के जघन्य बात की, अलग अलग असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हो सकते हैं, उसमें से जघन्य की बात चल रही है। यह सूत्र सुगम है क्योंकि ओग जगन्य लब्धि स्थान से, ओग जगन्य किसको कहना पड़ेगा,
सामान्य
सामान्य किसमें सामान्य, मनुष्य और तिरिंचों में सामान्य। हमने क्या देखा था, यानी मनुष्य तिरियंचों का भेद किए बिना यदि हम कहेंगे जगन्य स्थान कौन सा है प्रतिपात कर, तो ये नीचे वाला जगन्य प्रतिपात स्थान है। अब हम पूछेंगे मनुष्य वाले के जगन्य कौन सा है, तो भी वही है जो ओह से जगन्य था वो मनुष्यों में जगन्य होगा, परंतु तिरियंचों के वो स्थान ही नहीं होगा, तिरियंचों का जगन्य कुछ अलग। तो सामान्य यानी बिना डिफरेंस कुछ किए बिना जब हम कहेंगे तो उसको कहेंगे ओ, मात्र गुणस्थान की बात नहीं आती उसमें, सामान्य को कहेंगे ओ। तो कहते ओग जगन्य लब्धि स्थान से मनुष्य संहिता संयत के जगन्य प्रतिपात स्थान में भेद पने का आश्रय कर यह सूत्र प्रवृत्त हुआ है। पहले के बाद पहली बात सामान्य से बताई थी, अब मनुष्यों के लिए मार्गणा की अपेक्षा मनुष्य कहकर बताया, फिर भी स्थान तो वही का वही है। तिरिक्ख जोनियस्य परिवदमानयस्य जहन्यम लद्दिठाणम अनंत गुणम, ये यहाँ अल्प बहुत्व चल रहा है अलग अलग विशुद्धियों का। तो हमने सबसे जघन्य स्थान देखा प्रतिपात का, वो से भी यही जघन्य है, मनुष्यों की अपेक्षा भी प्रतिपात स्थान यही है। अब यहाँ हम चले गए इस स्थान पर, ये तिरियंचों के जगह लिए जघन्य है, प्रतिपात वाला ही वो मनुष्यों के जघन्य से ये तिरियंच का जघन्य अनंत गुणा विशुद्ध है। असंख्यात बार अनंत गुण वृद्धि हुई ना, षट्स्थान असंख्यात बार हुआ, एक बार भी षट्स्थान होता है तो अनंत गुणा पर पहुंच जाता है, ये असंख्यात बार हो गया है इसलिए उसको कहेंगे वो अनंत गुणा। देखो पहले पॉइंट पर हमने जघन्य लब्धि स्थान लिया, वही मनुष्यों के लिए होता है, वो दोनों एक ही। दूसरे स्थान पर अभी तिरियंच की बात देख रहे हैं कि उससे गिरने वाले तिरियंचोनी जीव का जघन्य लब्धि स्थान अनंत गुना है। जघन्य लब्धि स्थान कहा वो सेम लब्धि स्थान की बात चल रही है, क्योंकि पूर्व लब्धि स्थान से असंख्यात लोक प्राम प्रमाण षट स्थान स्थान बराबर करना, स्वर्थो करना षट स्थान ऊपर जाकर इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। समझ में, हमने नीचे से ऊपर हमने एक पंक्ति लिखी है तो इतने बीच में कितने स्थान चले जाएंगे, असंख्यात लोक प्रमाण, तब जाके तिरियंचों की जघन्य प्रतिपात स्थान मिलेगा हमें। उससे गिरने वाले तिरिंचोनी जीव ऊपर रह गया, तिरिक्ख जोनियस्य परिवदमानयस्य उक्कस्यम लब्धिठाणम अनंत गुणम, उससे गिरने वाले तिरिंचोनी जीव का उत्कृष्ट लब्धि स्थान अनंत गुणा है। ये तीसरे पॉइंट नीचे से जा रहे हैं ना, ये पहला, ये दूसरा, ये तिरिंच का तीसरा और ये मनुष्य का उत्कृष्ट चौथे पर आ जाएगा। तत्प्रायोग्य संकलेश से असंयम को प्राप्त होने वाले, देखो जगन्य कहा मिथ्यात्व को प्राप्त होने वाले, तिरियंचों की बात चल रही, तिरियंचों का जगन्य यानी ज्यादा संकलेश है, यानी वो पहले में आने वाला, तिरियंचों का उत्कृष्ट तिरियंच ही पांचों में से चौथे में जाने वाला, यहाँ लिखा है ना। तत्प्रायोग्य संकलेश से असंयम को प्राप्त होने वाले यानी चौथे गुण स्थान को प्राप्त होने वाले जीव के अंतिम समय इसे ग्रहण करना चाहिए। वेदक सम्यक्त्व से युक्त असंयम को प्राप्त होने वाले जीव के बाले हुए यह होता है, यह उक्त कथन का भावार्थ है। ये जो समझ में आती बात, जो पांचवे से चौथे में आता है उसके इतने तीव्र संकलेश में, जो पांचवे से पहले गुणस्थान में जाने वाला है तो अभी दोनों को हम पांचवा ही कहेंगे, पर उसके संकलेश उस समय ज्यादा है। पहले के लब्धि स्थान से इसका अनंत गुणापना सिद्ध भी नहीं है। पहले का लब्धि स्थान कौन सा लिया था? तिर्यंच का जघन्य प्रतिपाद, उससे तिर्यंच का ही उत्कृष्ट प्रतिपाद, वो अनंत गुणा।
तो यह चारित्र गुण में भी, श्रद्धा गुण में जब भी कुछ गड़बड़ होने वाली है, तभी चारित्र गुण में भी ज्यादा गड़बड़ हो जाती है है ना?
सब में चलेगी कि नहीं बात एक साथ?
हाँ,
चरित्र गुण सो के रखे, सोता रहेगा उस समय। चारित्र गुण का भी अपना कार्य चलेगा,
चल रहा है, वो तो स्वतंत्र है। हाँ। पर जो भी कभी श्रद्धा गुण में कभी कुछ गड़बड़ होने वाली है, तो चारित्र गुण में भी
वैसे तीव्र संकल्प होगी उस समय। संकलित करते उसका अनुभव का उदय ज्यादा होगा कि नहीं? हाँ। अभी गया नहीं,
अभी गया नहीं है, अभी तो पांचवे में है।
उत्कृष्ट स्थान चौथे में जाने वाले हैं। हाँ, वो चौथे में जाने वाला है। चौथे में जाने के पहला पूर्व समय, अभी उसका संयमा संयम ही कहेंगे उसको, पर उसकी विशुद्धि वो जगन्ने वाले से ज्यादा है, क्योंकि असंख्यात लोक प्रमाण संस्थानों को उल्लंघन कर उत्पन्न हुए इसकी अनंत गुणपने की सिद्धि बिना किसी बाधा के पाई जाती है। हमने देखा था ना, तिर्यंच के योग्य भी स्थान कितने, तो असंख्यात लोक प्रमाण जो हमने बाजू में देखा था, तिर्यंचों के जगन्ने से तिर्यंचों के उत्कृष्ट तक प्रतिपात में ही केवल असंख्यात लोक प्रमाण स्थान हो गया, और उसमें भी असंख्यात लोक प्रमाण बार सत्संग वृद्धि हो गया। आगे देखेंगे, मनुष्य संजदा संजदस्त परिवद मानगस्त उक्त स्वयं लब्धि स्थानम अनंत गुणम। अब ये मनुष्य का उत्कृष्ट लिया, क्योंकि बिटवीन बिटवीन रेंज तिरियन चौंकी थी, ये भी सारे गिरने वालों के ही है। हिंदी अर्थ देखते, उससे गिरने वाले मनुष्य संहिता संयत का उत्कृष्ट लब्ध स्थान अनंत गुणा है। यह भी तत्प्रायोग्य जघन्य संकलेश से असंयम के साथ सम्यक्त को प्राप्त होने वाले, यानी असंय सम्यक दृष्टि चौथा गुण स्थान है, मनुष्य के अंतिम समय में ही आत्मलाभ करता है। आत्मलाभ करते हैं, गिराता है तो आत्मा का लाभ हुआ क्या? हाँ बोलो, बोलो आत्मलाभ के अर्थ क्या है, बोलो नितिन
भाई। संकल्प की प्राप्ति को आत्मलाभ का है।
आत्मलाभ का अर्थ क्या है? आप स्कूल पढ़े नहीं, बायोग्राफी लिखते थे ना स्कूल में, खाते की लिखो, पेन की लिखो, पुस्तक की लिखो, हाँ उसको क्या कहते थे हम मराठी में, उसको कहते थे आत्मचरित्र लिखो, आत्मकथा करो, आत्मचरित्र, वो छाता अपनी स्वयं की बात बता रहे, ऐसा सोच कर हम वो मैं यहाँ उत्पन्न हुआ, फिर तूने मेरे को खरीद लिया वगैरह वगैरह, तो उस वहाँ आत्मा की बात करते थे कि वो छतरी के अपनी करते थे, अपनी को कहेंगे आत्मलाभ, यानी अपना लाभ। अपना लाभ यानी ये जो स्थान है वो स्वयं कब उत्पन्न होगा?
अपने का,
जब पांचवे से चौथे में जाने वाला है उसके होगा। या आत्मलाभ यानी आत्मा से कुछ संबंध नहीं है उसका, यानी अंतिम समय में उसकी प्राप्ति होती है, बस इतनी बात। ये आत्मलाभ के अर्थ है, आत्मलाभ करता है प्राप्ति होती है, कहाँ? ये उत्कृष्ट प्रतिपाद स्थान है, प्रतिपाद स्थानों में उत्कृष्ट है, यानी वो जघन्य से यहाँ विशुद्धि ज्यादा। जघन्य वाला कौन था? विख्यातों के सन्मुख वाला। उत्कृष्ट वाला कौन है? चौथे के सन्मुख वाला, तब उसकी प्राप्ति होती है, उसी को आत्मलाभ होता है। कहाँ आत्मलाभ यानी प्राप्ति। इतनी विशेषता है कि जाति विशेष के कारण ये कौन सी जाति की बात कर रहे हैं? यानी जैनों को ये होगा ना, ब्राह्मणों को नहीं होगा, मोहम्मदों को। ये मनुष्य जाति और सीरियन से जाति, उसको जाति कहा यहाँ पर। तो जाति विशेष के कारण सीरियनचों के प्रतिपात के योग्य उत्कृष्ट विशुद्धि से, मनुष्य संहिता संयत के प्रतिपात के योग्य उत्कृष्ट विशुद्धि अनंत गुणी हो जाती है। यानी पांचवे से चौथे में जाने वाला सीरियंच है, उसकी जो विशुद्धि है उससे
मनुष्य की विशुद्धि,
ये उत्कृष्ट विशुद्धि की बात। मनुष्य भी उतनी विशुद्धि के साथ चौथे में जा सकता है, नहीं जा सकता है वो बात नहीं है, परंतु इसकी यहाँ उत्कृष्ट विशुद्धि की बात लेनी थी ना, उत्कृष्ट स्थान लेना थी। और ये भी असंख्यात लोग प्रमाण आगे है, इसलिए पूर्व के लब्धि स्थान से, पूर्व का लब्धि स्थान कौन सा? तीरियंचों का उत्कृष्ट प्रतिपाद स्थान, उससे मनुष्यों का उत्कृष्ट प्रतिपाद स्थान असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान ऊपर चढ़कर इसकी उत्पत्ति देखी जाती है। इसकी उत्पत्ति को ही यहाँ आत्मलाभ का हो। अब आगे पढ़ेंगे, ये चारों ही स्थान हमने प्रतिपाद स्थान देखे, मनुष्य का जगन्य, फिर तीरंच का जगन्य, तीरंच का उत्कृष्ट, फिर मनुष्य का उत्कृष्ट, ये चार हो गए। अब आगे मनुष्यस्थ परिवज्य मानगस्त, पहले परिवद मानगस्त कहते थे ना, अभी परिवज्य मानगस्त जहन्नयम लब्धि ठानम अनंत गुणम, उसे प्रतिपद्य मान मनुष्य का जघन्य लब्धि स्थान अनंत गुणा है। यानी अभी प्राप्त करने का पहला समय है, उस समय की बात। उसमें भी हमने देखा था ये प्रतिपद्यमान स्थान, ये जघन्य भी मनुष्य के है, फिर तीरंच का जघन्य होगा इन बिटवीन, फिर तीरंच का उत्कृष्ट, फिर तीरंच मनुष्य का उत्कृष्ट, चार स्थान उसके भी होंगे और वो भी अनंत गुणे अनंत गुणे होंगे। तो ये हमने हिंदी पढ़ा ना, उससे प्रतिपद्यमान मनुष्य का जघन्य लब्धि स्थान अनंत गुणा है, इसको नंबर पांच देंगे हम। तत्प्रायोग्य विशुद्धि से संयमासंयम को ग्रहण करने वाले मनुष्य मिथ्या विशुद्धि, ये भी किसके होगा? मिथ्या तो में से जो पांचवे में आया है उसके बाद प्रथम समय का यह लब्धि स्थान लेना चाहिए। इसका यह पूर्व के लब्धि स्थान से अनंत गुणा होना असिद्ध नहीं है, यानी सिद्ध है, क्योंकि उनसे असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थानों से अंतराल से, अंतराल बताए ना, इन बिटवीन कोई अन्य स्थान होते तो बता देते, अंतराल है ना, ये स्थान किसी पांचवें गुण स्थान वाले के नहीं है, षट इतने अंतराल से इसकी उत्पत्ति होती है, यह इससे पूर्व ही बतलाए हैं। ये तो हमने जो प्रतिपात स्थान उत्कृष्ट देखा था मनुष्य का, उससे प्रतिपद्यमान जो जघन्य भी है वो अनंत गुणा विशुद्ध है, क्योंकि इन बिटवीन असंख्यात लोग बार तो सत्स्थान बुद्धि के स्थान छोड़कर ये उत्पन्न हुआ। आगे अब हमें पता है ना किसका आने वाला है नंबर, तीर्थ का जघन्य होगा। तीर्थ जोनियस्य परिवज्य मानगस्य जहन्नयम लब्धि स्थानम अनंत गुणम, उससे प्रतिपद्यमान तीर्यंच योनि जीव का जघन्य लब्धि स्थान अनंत गुणा है। ये प्रतिपद्यमान की बात है, यानी वो पांचवा गुण स्थान प्राप्त करने का पहला समय लेना, ये नंबर छह हुआ अपना। यह भी तत्प्रायोग्य विशुद्धि से संयमासंयम को प्राप्त होने वाले मिथ्यादृष्टि तीर्यंच के प्रथम समय में स्वरूप लाभ करता है, क्योंकि ऊपर के विशुद्धि उत्कृष्ट वाले हैं वो चौथे से आने वाले हम देखें, ये पहले से आया हुआ है, इसकी विशुद्धि कम है, जो चौथे से पांचवे में आने वाले की विशुद्धि ज्यादा हो। ये स्वरूप लाभ लिखा यहाँ, ऊपर आत्मलाभ लिखा था, क्या मैं यानी उसका स्वरूप वहाँ उत्पन्न हुआ है, यानी वो स्थान वहाँ उत्पन्न हुआ है, इतनी बातें। किंतु जात था
प्रथम अक्षर के साथ पांचवा गुणस्थान प्राप्त नहीं कर सकता है,
नहीं करेगा,
नहीं मैं पूछ रहा
हूँ। हाँ आप भूल गए, हाँ आप ही बताओ।
नहीं नहीं मैंने तो बेहतर प्रश्न क्यों उठाया, क्योंकि अनिवृत्तिकरण में सब परिणाम समान हो जाते हैं, तो अनिवृत्तिकरण में मनुष्य और एलियंस के परिणाम भी समान हो जाएंगे।
यहाँ बात किसकी चल रही है?
यहाँ तो वेदक की बात हो रही है, इसीलिए
वेदक की बात उन्होंने प्राप्त करने की बात पहले बता चुका है।
दो करण से जो प्राप्त करता है उसकी बात है, नहीं इसमें नहीं होगा। पर जो प्रथम भक्त के साथ जो वो प्राप्त करेगा उसका ये स्थान नहीं होगा।
यहाँ प्रथम उपशम की बात नहीं उठाई है, उसमें भी अलग हो।
हाँ वो ऊपर वाला होगा, क्योंकि अनिवृत्तिकरण में परिणाम समान होते जाते हैं और विशुद्ध भी समान होती जाती है।
हाँ।
तो वो जो चीज
अभी अभी यहाँ उसकी चर्चा नहीं आई है, परंतु ऐसे भी हो सकते हैं ना, क्योंकि कंडीशन क्या थी, गर्भ जो होना चाहिए वगैरह वगैरह। प्रथम ऑप्शन में हमने देखा
गर्भ ही वो प्राप्त
तीरियंशों के लिए, यानी तीरियंश गर्भज जो है वो प्रथम ऑप्शन प्राप्त कर सकते हैं। अब ये जो प्रथम ऑप्शन प्राप्त करने वाले जीवों की हमने अनिवृत्तिकरण में समान परिणामों की बात की, अब ये कौन से लिए, हमने दो कर्म से आने वाले जीव उसकी बात है यहाँ।
मेरे को प्रश्न क्यों उठा, क्योंकि अनिवृत्तिकरण में समान परिणाम हो जाते हैं, तो वहाँ पे मनुष्य और एलियंस के जो कॉमन स्थान है उसमें से होगा।
अभी उच्चम सम्यक के लिए वो स्थान कितने हैं, उतने ही है क्या नहीं है, ये तो प्रश्न उठा है। मनुष्य एलियंस उसमें भेद नहीं किया था, प्रथम सम्यक को प्राप्त करने वाले जीवों के अनिवृत्तिकरण में आने पर
समान
परिणामों की समानता हो जाती है। हाँ, क्योंकि हमने चारों गतियों के जीव लिए। हाँ दो ही जीव, उनके परिणाम समान हो गए। चारों गतियों के समान हो गए हमने, चौथे में आने वाले प्रथम उपशम सम्यक्त्व की बात कर रही हूँ मैं, यहाँ आप पांचवी की बात यहाँ हम ले रहे हैं, हमने वो चौथे वाले की बात की थी। यहाँ तो दो ही गतियाँ हैं, तो उनके परिणाम समान है।
नहीं अभी तो मैं पांचवी की
पहले
सम्यक्त्व वाला जो 28 के सप्ताह वाला पांचवा गुरु स्थान प्राप्त करेगा उसकी बात होगी।
हाँ अलग अलग विशुद्धि के साथ
ये मनुष्य और किरियन के जो समान परिणाम वाला है वो ऊपर के विभिन्न परिणाम वाले होंगे। तो मिथ्या दृष्टि जो प्रथम अक्षम के साथ पांचवा गुरु स्थान प्राप्त कर रहा है उसके परिणाम ऊपर वाले होंगे, ऐसे मेरा क्वेश्चन।
हाँ प्रथम अक्षम काल में विशुद्धि ज्यादा होगी। चले सकते फिर भी हमने जब अनुभाव के स्थान देखे थे, पहले से संयम को प्राप्त करने वाले वेदक को लिया था वहाँ, प्रथम उपशम को भी नहीं दिया था। हाँ, क्यों?
अच्छा हुआ मेरा पूछ के
नहीं उस संबंधी कोई चर्चा आएगी, अगर विशेष चर्चा तो देखेंगे हम। यहाँ तो अभी तक तो वैसी चर्चा उन्होंने नहीं ली, यानी वेदक और प्रथम उपशम की ऐसी कंपैरिजन यहाँ नहीं की। इतनी बात उन्होंने बताई है कि उपशम में तो पहले से गुण श्रेणी वगैरह जो कार्य शुरू हो जाता है, गुण संक्रमण भी चलता है, वैसा कार्य यहाँ नहीं हो रहा है, यानी यहाँ विशुद्धि थोड़ी कम हुई है। देखो ये हम देख रहे थे जाति विशेष के कारण पूर्व लब्धि स्थान से यह अनंत गुना हो गया, क्योंकि जिस प्रकार मनुष्यों के नीचे से तीसरी लाइन मनुष्यों के सबसे जघन्य संकलेश और विशुद्धि होती है, उस प्रकार तिव्यंचोनी जीव के सबसे जघन्य संकलेश और विशुद्धि का होना असंभव है, तथा तत्प्रायोग जघन्यों का ही उन दोनों के वहां होने का उपदेश पाया जाता है। यानी उसके इन बिटवीन ही रेंज रहेगी, सबसे जघन्य स्थान मनुष्यों के होगा। तिरिक्ख जोनियस्य परिवज्यमानस्य उपकस्यम लब्धिस्थानम् अनंत गुणम्, उससे प्रतिपद्यमान तिरिक्ष योनि जीव का उत्कृष्ट लब्धि स्थान अनंत गुणा होता है। शंका, वह किसके होता है? इसका समाधान, तिरिक्ष असंयत सम्य दृष्टि के सर्व विशुद्धि से संयमासंयम को ग्रहण करने के प्रथम समय में होता है। अब सर्व विशुद्धि कहा, क्योंकि यहाँ विशुद्धि के अलग अलग वेरिएशन हो सकते हैं, यानी मैक्सिमम विशुद्धि के साथ जो सेमासेम ग्रहण करता है उसकी बात है यहाँ पर। संयमा संयम, हाँ यह करो, संयमा संयम। क्योंकि प्राकृत में संयमा संयम लिखते हैं, ये कितने सात और अभी आठवें में चले जाएंगे ना, सात हो गए, अभी आठवें का पढ़ेंगे। मनुष्यस्य परिवर्जमानगस्य उपकस्यम लब्धिस्थानम अनंत गुणम्। उससे प्रतिपद्यमान मनुष्य का उत्कृष्ट लब्धि स्थान अनंत गुणा है, ये प्रतिपद्यमान वाले की बात है। आठ नंबर हो गया। शंका, वह किसके होता है? उसका समाधान, सर्व विशुद्ध मनुष्य असंयत समय दृष्टि के सैमासैम को ग्रहण करने के प्रथम समय में होता है, अन्य कथन सुगम है। अब उसके आगे की बात अल्पबोधों में, मनुष्यस्य अपरिवज्यमान अपरिवदमानयस्य जघन्यम लब्धिस्थानम अनंत गुणम्। अब ये अनुभव की बात चलेगी, उसमें जघन्य भी मनुष्यों की ही होता है। उससे अप्रतिपद्यमान अप्रतिपात करो, प्रतिपत हुआ, अप्रतिपातमान मनुष्य का जघन्य लब्धि स्थान अनंत गुणा है, ये नंबर नौ। शंका, वह किसके होता है? मिथ्यात्व से सेमासेम को प्राप्त हुए तत्प्रायोग विशुद्ध मनुष्य के दूसरे समय में होता है, क्योंकि पहले समय में तो वो प्रतिपद्य मान हुआ, दूसरे समय में अनुभव होगा। शेष कथन सुगम है। अब तीर्यंचों का जगन्य कहेंगे। तिरिक्ख जोनियस्य अपरिवज्यमान अपरिवदमानयस्य जघन्यम लब्धिस्थानम अनंत गुणम्। उससे अप्रतिपद्यमान अप्रतिपतमान ही लिख रहे हैं, मैं आगे भी प्रतिपतमान कह रहे हैं। अभी तक हम प्रतिपात स्थान देखते आए ना सब, परिवदमान गस्थ प्रतिपात स्थान लिखा है ना पहले। परिवाद स्थानस्थ और परिवद मानयस्थ,
अभी आगे सभी जगह प्रतिपत्त मान लिखा है।
एक एक में देखो, जब मान शब्द लगाए ना, ये कहाँ से मैं निकाल रही हूँ, 150 में, 142 में प्रतिपात स्थान प्रतिपद्यमान स्थान, नहीं वो स्थान के लिए प्रतिपात शब्द बराबर है, जब वो मान शब्द लगाकर उन्होंने विशेषण तैयार किया है ना, तब की बात में। देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ,
कभी मान लगाते हो तपा हो जाता है,
थान शब्द लगाते हैं तो परिवाद थाना नहीं लिखना, हिंदी नहीं मैंने बताया। देखो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वन परिवद मानस मुझे भी मिला था, परिवज्यमान परिवर्तमान परिवाद, देखो ये परिवाद लिखते हैं और कहीं कहीं परिवद कहते हैं, प्राकृत में मैं डिफरेंस कर रही हूँ। देखो 150 पॉइंट पर सूत्र देखेंगे, मनुष्यस्य परिवद मानयस्य है ना, यानी प्रतिपत मान मनुष्य ऐसा उन्होंने उसका अर्थ किया। और जब स्थान शब्द लगाते हैं तो परिवाद स्थान से ऐसा उन्होंने किया। ये परिवाद कहाँ लिखा है दिखाऊं आपको, 146 में प्राकृत की लास्ट लाइन, परिवाद स्थानत्तम दूसरी लाइन 89 की दूसरी लाइन में भी लिखा है एदस यंत परिवाद पावगस्त, यानी वो क्या कहना चाहते, परिवाद स्थान के लिए उन्होंने विशेषण बताया। और वो मनुष्य कौन सा है गिरने वाला, उसके लिए प्रतिपतमान कहा, एक ही बात है, वो प्रतिपतमान लिखेंगे हम कायम रखेंगे। और एक बार हमने पा किया है इसको, शायद वैसा भी रख सकते हैं, यानी अर्थ में कोई विशेष फर्क नहीं पड़ रहा है। प्रतिपतमान मनुष्य के लिए विशेषण बनाया है और प्रतिपात स्थान स्थान के लिए। तो वह किसके होता है नीचे की शंका 103 नंबर की, समाधान पढ़ा था उन्हें मेरे ख्याल से, मिथ्यात्व से संयमासंयम को प्राप्त हुए तत्प्रायुज्य विशुद्ध मनुष्य के दूसरे समय में होता है। उससे आगे का सूत्र तिरिक्ख जोनियस्य अपरिवज्यमान अपरिवदमानयस्य जहन्नयम लद्दिथानम अनंत गुणम, उससे अप्रतिपद्यमान अप्रतिपतमान तिरिंश योनि जीव का जघन्य लब्धि स्थान अनंत गुणा है। यानी अनुभव माली बात चल रही, ये 10 नंबर हो गए। वह किसके होता है तिरिंश मिथ्या दृष्टि के तत्प्रायोग्य विशुद्धि से सेमासेम को प्राप्त होने के दूसरे समय में होते हैं होता है, और यह जाति विशेष के कारण, ये जघन्य स्थान है ना, तो दूसरे समय में ये मिलता है क्योंकि तीसरे समय में इससे भी अनंत गुणा हो जाएगा। जाति विशेष के कारण पूर्व के लब्धि स्थान से अनंत गुणा हो गया है। तिरिक्ख जोनियस्य अपरिवज्यमान अपरिवदमानगस्य उपकस्यम लब्धिस्थानम अनंत गुणम, उससे अप्रतिपद्यमान अप्रतिपतमान तिरिंश योनि जीव का उत्कृष्ट लब्धि स्थान अनंत गुणा है। ये 11 पर आ गए। शंका, वह किसके होता है सर्व विशुद्ध तिरिंश के स्वस्थान में ही होता है। गुणस्थान यानी
द्वितीय तो से आने वाले के या चौथे से आने वाले की बात नहीं की,
अभी कहीं से भी आया हो वो स्वस्थान
हो गया। अच्छा, वो तो पहले समय हो जाएगा।
एकांत वृद्धि के स्थान बीत गए, स्वस्थान वाला है उसमें जब उसकी विशुद्ध मैक्सिमम होगी। मनुष्यों में तो हम कहेंगे कि ऊपर जाने वाले के, तीरियंचों में तो नहीं कह सकते, उसका टॉप मोस्ट पांचवा ही है। तो पांचवे गुणस्थान में रहते हुए जब विशुद्धि ज्यादा होगी तब की बात, कब ज्यादा हो सकती है पांचवे गुणस्थान में, कब ज्यादा हो सकती है मनुष्य दूसरे समय में नहीं, दूसरे समय से भी तीसरे समय में अनंत गुणा होगा, उससे भी चौथे समय में अनंत गुणा होगा। एकांत बुद्धि में तो अनंत गुणा ही होता चला जाए, उसके बाद उससे भी बढ़ सकता है ना।
एकांत बुद्धि के पश्चात कहां से भी होगा,
कहाँ पर भी है। मैंने ये पूछा कि कुछ ऐसे विशिष्ट समय में होगा कि नहीं होगा, जैसे अनंतानुबंधी की विसंजना कर रहा है उस समय तो हो सकता है कि नहीं, ये मैंने पूछा। यानी जब उत्कृष्ट विशुद्धि में आत्मसन्मुख परिणाम है वो उस अवस्था में होगा, उसका उत्कृष्ट विशुद्धि जब कभी होगी उसकी बात। तिरियंश की मनुष्यों के लिए तो सन्मुख संयम के सन्मुख ले लेंगे, यहाँ तिरियंशों की बात हुई थी, इसको 11 नंबर दिया था। अब आगे मनुष्य की बात पढ़ेंगे। मनुष्यस्य अपरिवज्यमान अपरिवदमानयस्य उपकस्यम लब्धिस्थानम अनंत गुणम, उससे अप्रतिपद्यमान अप्रतिपतमान मनुष्य का उत्कृष्ट लब्धिस्थान अनंत गुणा है, इसको नंबर 12 दिया। हर एक में चार चार किए थे हमने, अब कहते वह किसके होता है, तो कहते संयम के अभिमुख हुए सर्वविशुद्ध मनुष्य के। सर्वविशुद्ध ने अलग अलग विशुद्धि के साथ संयम प्राप्त कर सकता है कि कौन सा जीव अभी यहाँ से वेदक के साथ जाएगा सातवें में, ये उपशम क्यों नहीं होगा? पांचवें गुण स्थान वाला उपशम समित के साथ सातवें में जा सकता है कि नहीं जा सकता, ये मेरा प्रश्न। हाँ जैसा मंजू बहन आप कहते हैं नहीं जाएगा, बोलो
ये तो 28 की सत्ता वाला है और उसके तो प्रथम उत्तम हो ही नहीं सकता है ना,
क्यों नहीं हो सकता? वही तो मैंने प्रश्न
पूछा,
पहले से सातवें में जा सकता है ऑप्शन में,
उत्तम नहीं करेगा
प्रथम ऑप्शन समस्त की कंडीशन क्या है, मिथ्या दृष्टि होना चाहिए, जो मिथ्या तो से विशिष्ट कर्मों का दर्शन होने और उसका उपशम करके ऊपर के गुणस्थानों में जाता है चौथे में पांचवें में या सातवें में, उसको प्रथम उपशम कहते हैं। तो पांचवें में अभी बहुत समय से है वो
प्रथम उपशम,
ये वेदक समय दृष्टि है और यहाँ वेदक की थ्रूआउट बात चल रही है और वो सातवें में जाएगा तो वेदक के साथ ही जाएगा। कोई समय दृष्टि जब ऊपर के गुणस्थानों में जाता है
वेदक,
तो वहाँ प्रथम उपशम हो ही नहीं सकता, द्वितीय उपशम हो सकता है, क्योंकि द्वितीय ऑप्शन से उतरते हुए आया है तो हो सकता है ऊपर नीचे करे कुछ, उसकी बात यहाँ नहीं ले रहे। इस प्रकार यानी जो विशुद्धि के अलग अलग यहाँ ग्रेडेशन थे उसमें जो टॉपमोस्ट विशुद्धि हुई उसको यहाँ लिया। इस प्रकार अल्प बहुत्व के समाप्त होने पर ये विशुद्धि का अल्प बहुत्व यहाँ समाप्त हुआ, लब्धि स्थान प्ररूपणा समाप्त होती है, क्योंकि उसके बारे में हमने बहुत सारे देखे स्थानों की अल्पभूत वगैरह। अब औदयिक भाव औदयिक आदि भावों में से संयमा से हम लब्धि स्थान संबंधी कौन सा भाव है, इस प्रकार शिष्य के अभिप्राय को आशंका रूप में स्वीकार कर उसका निर्णय करने के लिए आगे के सूत्र प्रबंध को कहते हैं। हाँ देखो औदयिक आदि में कौन कौन से भाव होते हैं टोटल, पहले हम उसका निर्णय करेंगे, पांच कौन से सार्वक्षणिक और कुछ रह गया कौन सा आपके पास है कि नहीं, कौन सा है आपके पास अभी, कौन सा है औदयिक और कुछ है, कौन सा रह गया
अश्विन भाई
देखो जीव के पांच भाव बताए, पारिणामिक तो उसका स्वभाव है और बाकी चार भाव तो पर्याय रूप भाव है, तो उसमें औपशमिक जब कर्मों का उपशम औपशमिक समय का औपशमिक चारित्र औपशमिक भाव है, चौपशमिक भाव चौपशमिक ज्ञान है, चौपशमिक समय है संयमा संयम है, ये सब क्या है चौपशमिक भाव है, शायिक भाव तो जो केवल ज्ञानी के होते हैं और औदयिक भाव हम सबको है या औदयिक कर्मों के उदय में होने वाले जीव के भाव, उदय में वो तो निमित्त रूप से बने, औदयिक भाव है तो जीव के अपने। फॉर एग्जाम्पल औदयिक भाव के कुछ नाम बताएंगे आप, औदयिक भाव कितने होते हैं आपको याद है, 21 होते हैं, कुछ नाम बताएंगे, गति छेलेच्छा चार कषाय तीन वेद अज्ञान असंयम असिद्धत्व
और
एक रह गया ना
मिथ्यात्व,
मिथ्यात्व है ना मेन रह गया, आपने पहले असंयम बताया था ना, मिथ्यात्व असंयम और एक अज्ञान और असिद्धत्व, इक्कीस हो गए ना, कोई रह नहीं जाए अपना तो यहाँ क्या कहते हैं देखो, औदयिक आदि भावों में से ये कौन सा स्थान है पूछ रहे हैं, सेमा सेम लब्धि स्थान कौन सा भाव है ये पूछ रहे हैं। अभी हम देखेंगे, निर्णय करेंगे फिर। तो सूत्र में बताते हैं, संजदा संजदो अपचक्खान कषाये न वेदयति, संयता संयजी अप्रत्याख्यान कषाय को नहीं वेदता, नहीं वेदता नहीं उसका, उसको उदय नहीं है। किसका किसका उदय नहीं है, पांचवे वाले को भेजल, अनंत अनुबंधी का भी नहीं है और अप्रत्याख्यान का भी नहीं, क्योंकि वहां उनकी उदय शक्ति का अत्यंत क्षय पाया जाता है। यहाँ की विशेषता इसी है कि यहाँ इन कषायों का उदय बिल्कुल नहीं पाया जाएगा, इसलिए संयमा से हम लब्धि औदयिक नहीं है यह सिद्ध हुआ। क्योंकि अपना आवरण करने वाले कर्मों के उदय क्षय से उत्पन्न हुए उसकी औदयिक संज्ञा स्वीकार करने में विरोध है। संयमा संयम का आवरण करने वाला कौन सा कर्म है, अप्रत्याख्यान। अप्रत्याख्यान कषाय जिसके है वो संयमा संयम नहीं होने देगा। तो ये संयमा संयम हुआ है इसका अर्थ क्या है, अप्रत्याख्यान आवरण यानी प्रतिपक्ष का उदय नहीं है, तो उसका उदय नहीं है, उदय में होने वाले को उदय कहेंगे, उसका उदय नहीं है। तो यहाँ संयमा संयम जो प्राप्त हुआ है, जो विशुद्धि हुई है, वो किसी कर्म के उदय से हुई ना, तो कहते नहीं, नहीं समझे। संयम क्यों नहीं हुआ है तो कहेंगे उदय है, यहाँ संयमा संयम हुआ है वो कौन से कर्म के उदय से हुआ है,
नहीं प्रत्याख्यान
तो कहते हो किसी कर्म के उदय से नहीं हुआ है, क्योंकि इसका प्रतिपक्ष का उदय होता तो इसका उदय कहते हैं, कुछ भी कर्म का उदय तो उसका उदय यहाँ थोड़ी कहेंगे, यहाँ केवल ज्ञानावरण का उदय है। संयमा संयम लब्धि किससे प्राप्त हुई है, किसी कर्म के उदय से नहीं, ये बात याद। पांचवे गुणस्थान वाले के अन्य उदय भाव है कि नहीं उसकी चर्चा नहीं है, उसको कषाय वाले है, वेद वाला वेद है, कषाय है, गति औदय भाव है, असिद्धत्व चल रहा है, बाकी सब है।
ये तो परिणाम
पारिणामिक भाव तो सबको है, पर्याय पारिणामिक भाव रूप होती ही नहीं। पारिणामिक भाव में सॉरी पर्याय में तीन चार ही बातें कही, या तो औदयिक होगा, औक्षणिक होगा, क्षायिक होगा, क्षौक्षणिक होगा। पारिणामिक तो सबके साथ है, अरिहंतों को वो दर्शन मुख की अपेक्षा लिया है। आप बहुत घोटाला कर रहे दर्शन मुख की अपेक्षा, क्योंकि उसका ऑलरेडी उपशम हो चुका है, अब नया कोई नया कार्य वहाँ नहीं हुआ है, ना उदय है ना उपशम है, वो उपशमित है उसकी बात नहीं है। अब नया उपशम करने का कार्य चल रहा है क्या, जो औपशमिक समय तो प्राप्त होने के पूर्व में उसका उपशम भाव था, उपशमकरण चल रहा है, वो कार्य अभी पूरा हो चुका है, अभी उसको नहीं कहेंगे वो उपशम कर रहा है। और पहले चार गुणस्थानों में दर्शन मोहनी की क्या अवस्था है उसकी चर्चा होती है। पहले गुणस्थान में नित्यत्व का उदय है, दूसरे की बात बाद में करते हैं, तीसरे में सम्यक नित्यत्व का उदय है, चौथे में उसका तो देशघाती का उदय है, इसलिए उसके हम उपशम भी कहेंगे, या उपशम भी कह सकते, उपशम समय पर या क्षायिक समय पर भी कहते, चौथे में तो तीनों। दूसरे में क्या होगा दर्शन होने का, कुछ नहीं है, ना उदय नहीं है, ना उपशम, उपशम यानी नया उपशम करने का कार्य भी नहीं है, ना क्षोक्षम कहेंगे उसको, इसलिए उसका क्या है तो पढ़ना नहीं, वो चर्चा अलग। यहाँ क्या कहना चाहते देखो, कि अप्रत्याख्यानावरण उदय का अत्यंत क्षय हो गया है, इसलिए संयमा संयम लब्धि औदयिक नहीं है। ये तो जीव का अपना विशुद्ध परिणाम है, क्योंकि अपना आवरण करने वाले कर्मों के उदय क्षय से उत्पन्न हुए, उदय का क्षय ने उदय का अभाव, अन्य रूप से उदय होकर फिर रहे हैं, उसकी औदयिक संज्ञा स्वीकार करने में विरोध है। उसका अपने रूप से उदय हो और ये भाव हो तो हम कहेंगे उसको औदयिक। अब कहते पच्चक खाना वर्णीय भी संयमा संयम न सिंची आवरणी, यहाँ भी वो फ्लॉवर कर देना चित्र पर। क्या कहते हैं, प्रत्याख्यानावरण कषाय भी संयमा संयम का कुछ आवरण नहीं करते, वो संयम को नहीं होने देते, उसकी बात नहीं है। संयमा संयम को रोकते हैं क्या?
नहीं।
और जो वहां वेदे जाने वाले, ये उसका उदय है, उस तरह कहते वेदे जाने वाले प्रत्याख्यानावरणीय कषाय है, वे भी संयमा संयम का कुछ उपघात नहीं करते, उसका घात नहीं करते, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। क्योंकि सकल संयम का प्रतिबंध करने वाले ये प्रत्याख्यानावरण कषाय कैसे है, सकल संयम नहीं होने देते, संयम नहीं होने देते। पांचवें गुण स्थान वाले हैं ना, दो कषाय का उदय है अभी टोकरी का, वो संयम नहीं होने दे रहे। तो कहते सकल संयम का प्रतिबंध करने वाले उनका देश संयम लब्धि में व्यापार नहीं स्वीकार किया गया, इसलिए उनके निमित्त से भी इसकी औदयिक संज्ञा की प्राप्ति नहीं है। आप कहेंगे यहाँ पर प्रत्याख्यानावरण का उदय है इसलिए इसको औदयिक कहो,
तो संयम को घात करने में कारण
प्रत्याख्यानावरण उदय तो प्रत्याख्यान कषाय में निमित्त है, यहाँ होने वाले प्रत्याख्यानावरण कषाय को हम औदयिक कहेंगे, संयमा संयम को नहीं, ये बात बताना चाहते। संयमा संयम परिणाम क्या है, जीव की विशुद्धि है वहां पर, पांचवे गुणस्थान के योग्य वितरकता है, वो जो उसको संयमा संयम प्राप्त हुआ है वो औदयिक भाव है क्या?
नहीं,
यही बात चल रही है यहाँ पर। इधर कुछ ख्याल में आती बात, थोड़ा थोड़ा सा देखो, जो कर्मों के उदय से हो उसको औदयिक कहेंगे, मिथ्या दृष्टि के मिथ्यात्व का उदय है तो उसको मिथ्यात्व का उसका अपना परिणाम है उसको औदयिक कहेंगे, क्रोध मान माया लोक का जो अनंत आनंदी भी है सभी चारों प्रकार के तो उसको कहेंगे वो उसके औदयिक भाव है। यहाँ बात पांचवें गुणस्थान के योग्य संयमा संयम की चल रही है, संयमा संयम जीव का शुद्ध परिणाम है अपना, वो उसकी लब्धि है, ये शुद्धि की लब्धि हो गई उसकी, तो वो कौन से कषाय के उदय में हो रही है, क्या अप्रत्याख्यान के उदय में होते तो उसका उदय ही नहीं है, वही उसको रोकने वाला था। अब कहते यहाँ तो प्रत्याख्यान का उदय है तो उसके उदय में संयमा संयम हो रहा है,
नहीं
वो संयमा संयम को रोक नहीं रहा, पर उसके उदय के कारण ये नहीं हो रहा है,
तो संयम को रोक है, संयमा संयम को नहीं रोक
नहीं, तो ये संयमा संयम उसके औदयिक भाव नहीं कह सकते हम उसको, ये बात यहाँ हो रही है। अब कहते हैं शेषा चदु कसाया नवनो कसाय वेदनीयानी च उदिन्नानी देशघातिम करेंती संयमा संयमम, यहाँ भी सूत्र में वो साइन कर देना। शेष चार कषाय और नौ नौ कषाय वेदनीय उदीर्ण होकर, उदीर्ण होते नहीं यहाँ उदय चल रहा है, संयमा संयम को देशघाती करते हैं। यहाँ पर शेष चार कषायों के ग्रहण करने से चार संज्वलन प्रकृतियों का ग्रहण करना चाहिए। अब शंकाकार पूछते हैं यहाँ अनंतानुबंधियों का ग्रहण क्यों प्राप्त नहीं होता, उसका समाधान क्योंकि पहले ही उनके उदय का विनाश हो गया है, इसलिए इस विचार में उनका अधिकार नहीं है। सम्यक्त के साथ हम उसकी बात करते तो यहाँ उसकी बात है, इसलिए यहाँ पर जिनका उदय विद्यमान है ऐसे चार कषाय और नौ नौ कषाय वेदनीय कर्मों को ग्रहण कर संयमा संयम लब्धि के शोषम पने का इस प्रकार समर्थन करना चाहिए। वो किस प्रकार वो बता रहे, यथा वे तेरह कर्म, कौन से तेरह कर्म नितिन भाई? बहुत अच्छा, चार संयोजन और नौ नौ कषाय, ये जो 13 कर्म है वे देशघाती स्वरूप से उदीर्ण होकर, उदीर्ण है उदीर्ण होकर, उदीर्ण उदय हो जाना, संयमा संयम गुण को देशघाती करते हैं, शाओक्षमिक करते हैं। यह उक्त कथन का तात्पर्य है, क्योंकि देशघाती स्वरूप उदय से उत्पन्न हुई शोक्षम लब्धि को भी कार्य में कारण के उपचार वश देशघाती संज्ञा की है। क्या कहते हैं, ये जो शोक्षम लब्धि यहाँ उत्पन्न हुई है वो लब्धि को भी देशघाती बताती है। देखो जो पहले गुणस्थान वर्ती है उसको भी ये चार कषाय चोकड़ी का उदय, परंतु उसके अनंतानुबंधी तो समझ गए, परंतु अन्य जो है वो भी किस रूप से वहाँ उदय चल रहा है, संज्वलन की बात करेंगे। संज्वलन सर्वघाती रूप से उदय हो, जब तक संयम नहीं हो रहा है तब तक उसका कैसा चल रहा है,
सर्वघाती,
परंतु यहाँ उसका भी देशघाती रूप से उदय हो रहा है। ये देशघाती रूप होना ये पांचवे गुणस्थान की विशेषता, तो देशघाती रूप से उदय होना इसी का दूसरा नाम है क्षोक्षम। तो ये क्षोक्षम भाव है ये बात सिद्ध करे। शंका, परंतु उनका यहाँ देशघाती उदय यह नियम कैसे बनता है? आप छठे सातवें में संयोलन को देशघाती कहो तो कहो, यहाँ क्यों कह रहे हैं ये इसका प्रश्न है। उसका समाधान, नहीं, क्योंकि संयमा संयम की गुण की अन्यथा उत्पत्ति नहीं बनती, इसलिए यहाँ उनके देशघाती रूप उदय का नियम सिद्ध होता है। इसलिए चार संज्वलन और नौ नौ कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों का उदय क्षय होने के, यानी उदयाभावी क्षय, उदय क्षय, उसके सर्वघाती रूप से उदय नहीं हो रहा है, और उन्हीं के देशघाती स्पर्धकों का उदय होने से सेमा सेम लब्धि अपने स्वरूप को प्राप्त करती है, इसलिए वह शौक्षमिक है, यह सिद्ध हुआ।
तो सज्जलन का उदय द्विस्थानी या पांचवें गुणस्थान से हो जाएगा?
हाँ, द्विस्थानी हो जाता है ना, वो भी देशघाती हो जाता है, उसका भी देशघाती रूप से उदय चाहिए। वो तो बात पहले, वो उसका संयमा संयम का आवरण नहीं करती, ये बात यहाँ जो प्रत्याख्यान आवरण है संयमा संयम को आवरण नहीं करती, वो संयम का आवरण करती है, संयमा संयम का नहीं
करती।
तो ऑलरेडी यानी प्रत्याख्यान आवरण का स्वरूप ही ऐसा है, उसको
संयम नहीं होने,
संयमा संयम को आवृत नहीं कर सकती, संयम को कर सकती। यथाख्या नहीं होने देता है, परंतु उसका सर्वघाती का उदय भी नहीं होता है, यहाँ पर उसका मंद उदय हो जाता है, इसलिए थोड़ा संयम भी प्राप्त है ना, इस तरह से उसको ले लें, पार्शल संयम प्राप्त क्यों है, क्योंकि उसके देशघाती का उदय है। अब कुछ अन्य आचार्यों की कुछ बात है क्या, यहाँ क्या बताओ, कभी देखेंगे ये इनका उदय देशघाती का, उनका सर्वघाती का उदय हो तो क्या होगा, संयम बिल्कुल प्रकट नहीं, यहाँ थोड़ा सा संयम प्रकट है। संज्वलन का देशघाती होने से ये बात हुई, कल इसकी चर्चा करेंगे। अभी जावानी के ज्ञान ते तुझे लोकालो सोवानी मस्तक नऊ सदा देव।